समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीच।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज पब्लिक स्पीक में हम आपके साथ चर्चा के लिए जो विषय लेकर आए हैं वो है गवर्नमेंट्स एफर्ट्स फॉर स्किलिंग इंडिया, यानी कौशल संपन्न भारत के लिए सरकार के प्रयास। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। परिचर्चा में भाग लेने के लिए, इस समय आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं मिस्टर अतुल कुमार तिवारी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और वेद मणि तिवारी जी, सीईओ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड एमडी एनएसडीसी इंटरनेशनल। आप दोनों विशेष मेहमानों का आकाशवाणी के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम के दौरान आप इस विषय से संबंधित प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं, और कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, जिज्ञासा हो, समस्या हो तो टेलीफोन नंबर हम आपको बता दें 0112342105 और दूसरा नंबर है 2331444। साथ ही आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 9289094044 पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू अवर एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग वेरियस स्किल्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड हाउ दे कैन एक्सेस इट। एंड दिस इज अ बायलिंगुअल प्रोग्राम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन हिंदी और इंग्लिश। हमारे स्टूडियो की फोन लाइन्स भी खुल चुकी हैं। इस बीच इस विषय के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट हैज launched the National Skill Development Mission as well as the National Policy on Skill Development and Entrepreneurship in 2015 to improve the skilling ecosystem in the country. Under these initiatives, skilling training is provided to the youth under various schemes with the aim of addressing employment ability gaps. The government's Skill India mission has successfully trained more than 14 million youth upskilled and reskilled. तो स्किल इंडिया मिशन योजना में चार अन्य जो योजनाएं शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना, ये सब सम्मिलित करके शुरू की गई है। तो इसके बारे में हम और सारी जानकारी अपने विशेषज्ञ मेहमानों से लेंगे। इस बीच अगर मैं पहला सवाल ये करूं कि जो हमारे युवा श्रोता हैं, जो अभी 10वीं पास की है या 12वीं पास की है तो, और वो स्वरोजगार चाहते हैं, तो सर मैं पहला क्वेश्चन आपसे करूंगी अतुल जी कि ये बच्चे जो हैं, जो युवा हैं, उनके पास क्या क्या विकल्प सरकार दे रही है।
धन्यवाद चंद्रिका जी। ये मैं ये बताना चाहूंगा कि युवाओं में कौशल विकास करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी स्कीम्स हमारी चल रही हैं। खासकर 10वीं और 12वीं पास करने के उपरांत सर्वप्रथम हमारे पास आईटीआई की व्यवस्था है, जहां पे एक साल की, दो साल की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की जाती है, और ये हर एक राज्यों में, हर एक जिलों में ये आईटीआई व्यवस्था हमारी की गई है। अभी उनकी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, तो अगर वो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर उस पर संपर्क करें तो अपने अंकों के आधार पर उनका आईटीआई पे चयन किया जा सकता है, जो काफी इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज रहती हैं और इनसे उनको रोजगार मिलने में काफी आसानी होगी। उसके अलावा भी अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करना चाहें तो हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हर एक जिले में स्किल इंडिया सेंटर्स, पीएमके, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बने हुए हैं, जिसका उपयोग करके भी वो वहां पे रोजगार संबंधित शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी की जा सकती है। हमारे यहां एक और व्यवस्था है, उसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का अर्थ यह हुआ कि कैसे वो अर्न वाइल लर्न की व्यवस्था के अंतर्गत वो किसी उद्यम में लगकर साल भर या दो साल की वो अपने प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है, उन्हें एक्सपीरियंस भी मिलती है, उन्हें स्किलिंग भी मिलती है, ताकि उनको रोजगार मिलने में सहायता की जाती है। उसके साथ ही साथ हमारे जनशिक्षण संस्थान भी, लगभग 300 जनशिक्षण संस्थान हमारे पूरे देश में हैं, जहां पे कम्युनिटी कनेक्ट करते हुए लोगों को उनके लिए फ्लेक्सिबल स्किलिंग कराई जा सकती है। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जैसा युवा चाहें, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग लेना चाहें या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेना चाहें या और बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेना चाहें, उस सब सब सारे तरह की कौशल विकास की व्यवस्था हमने की हुई है, जिसका काफी लाखों युवा इसका लाभ उठा रहे हैं।
जी, हमारे पास पहले श्रोता है धर्मवीर दिल्ली से। धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछे।
नमस्कार मैडम जी।
नमस्कार।
हाँ, एक्सपर्ट को नमस्कार।
नमस्ते
सर। जैसे कि अभी पिछले साल अपना 2022 में ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था क्या कि थाने के अंदर एक कौशल विकास की योजना चलती थी, वहां ट्रेनिंग होती थी बच्चों की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, तो हमारे बच्चों ने इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कोर्स किए थे। क्या ये दोबारा से चालू होने के अभी कब तक है और इसके आगे का उनको आगे
करना
पड़े तो कैसे कर पाएंगे?
धर्मवीर जी, ये जो थाने में हमने ये जो ट्रेनिंग की थी वो उसकी अवधि अभी समाप्त हो चुकी है, पर हम अवश्य अगर इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह की स्किलिंग की व्यवस्था हम करा सकते हैं।
इस बीच एक व्हाट्सएप पर सवाल है, ये मेरे ख्याल से आप थोड़ा इसका जवाब तो हम दे चुके हैं कार्यक्रम में। इन्होंने लिखा है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउ कैन वन एक्वायर स्किल्स इन गवर्नमेंट स्किल सेंटर्स?
उसके लिए जैसा हमने बताया कि अभी हमारे जो स्किलिंग सेंटर्स जिले में हैं वहां पे अनवरत डिफरेंट बैचेस चलती रहती हैं, उनका हमारे जिले में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स होते हैं, स्किल ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ हमने स्किल इंडिया डिजिटल हब, एक हमारा एक पोर्टल है जो आप ऐप स्टोर से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपना थोड़ा सा विवरण देने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किस एरिया में कहां पे स्किलिंग सेंटर हैं, कहां पे कौन से बैचेस चल रहे हैं, जिसका आप पूरा लाभ उठाते हुए अपने जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास आप ऐसे स्किलिंग सेंटर को खोजकर वहां पे आप अपनी स्किलिंग भी करा सकते हैं।
जी, अब हमारे एक और श्रोता है ओडिशा से, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जी, स्वागत है आपका, बोलिए। यस, हेलो।
हेलो।
यस यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस
Yes, sir. I have the two questions, sir.
Okay.
My first question is, what are the opportunities for the most prioritized sections of society, the vulnerable sections? They have the SCST community in the government skill education program.
Mm-hmm.
My second question, there have the many franchise companies or many stakeholders who have got the permitted from the government of India, but they train the their sections of society, but they train, actually not they train, but then the sum of the 2 to 3 days of training program that is not sufficient from them, and they have got deprived in their system.
Okay.
And how they can be trained and what are the programs?
Okay, we'll
yeah.
Got it.
Prashant ji, I would like to tell you that the skilling program, whatever the government runs, it is for everyone. And we have the SCST students, they are adequate number, they are more than 25%. In some cases, they are more than 30% as well. So it is free for everyone, and everybody is welcome. Second point is that when you're talking about two, three days training, maybe that is, we call it recognition of prior learning. The people are already skilled, but they do not have the certification. So that is what the small 2-3 days, 5 days training provides. For example, we have this PM Vishwakarma scheme, where the 18 trades people are there who are traditional artisans. They are already trained, but we have to give them certification. For that, we have done the upskilling. Certainly, for the newcomer, the 2-3 days training is not sufficient. It is there only for the people who already know the trade. But as I told you earlier, that we have the ITIs, we have the PMKK, we have the Kaushal Vikas Yojana, we have the Jan Shikshan Sansthan, we have apprenticeship, where the training is maybe 5 months, 6 months, 1 year, 2 years, depending upon the trade or the activities or the occupation which are there. So certainly that can be taken advantage of.
हमारे साथ वेदमणि तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि आपका जो ये NSDC है, ये किस तरह से कार्य करता है कौशल विकास के क्षेत्र में?
श्रोताओं को मेरा नमस्कार। एनएसडीसी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है
जी।
भारत सरकार की जो भी स्कीम्स स्किलिंग के बारे में जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो कराता है वो एनएसडीसी के माध्यम से एग्जीक्यूट होती है। जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी कि किसी जिले में अगर हमको कोई स्किल सेंटर खोजना है तो एनएसडीसी वहां पे स्किल सेंटर्स हेल्प सेटअप करने में हेल्प करता है। ये सेंटर्स जैसा आईटीआई बताया गया उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी हैं और पिछले एक दो साल में स्कूल और कॉलेजेस के साथ मिलकर स्किल हब की भी स्थापना की गई है। तो और तो इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप की बात है अप्रेंटिसशिप में प्राइवेट सेक्टर का बड़ा योगदान होता है क्योंकि उसपे जो लोगों को स्टाइपेंड मिलता है उसका 75% प्राइवेट सेक्टर पे करता है। तो एनएसडीसी का ये भी काम होता है कि प्राइवेट सेक्टर से मिलके और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाए।
हमारे अगले श्रोता है दरभंगा बिहार से मोहन पासवान। हेलो मोहन जी।
जी
बोलिए।
इकट्ठे जय हिंद मैडम एंड सर।
जी हाँ।
कौशल संपन्न भारत देश को युवा प्रधान देश भी कहा जाता है सर। सर राज्य देश में रहने वाले युवा कौशल में गरीब है सर। युवाओं को युवा कौशल संपन्न बनाने के लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं सर पंचायत और जिला स्तर पर सर। एक प्रश्न और पूछने का अगर आदेश है तो पूछ सकता हूँ।
हाँ पूछिए पूछिए।
सर कृषि प्रधान देश भारत में कृषि कार्य कर रहे किसान को कृषि कार्य के लिए कृषि कार्य कौशल संपन्न युवा बनाने के लिए क्या प्रावधान बनाया गया है सर प्रखंड और पंचायत स्तर जिला स्तर पर सर।
जी अब जवाब सुन लीजिए।
मोहन पासवान जी बहुत बहुत नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पंचायत लेवल पर या जिला स्तर पर हमारी जनशिक्षण संस्थान भी हैं हमारी कौशल केंद्र भी हैं और जैसा और बहुत सारे एजुकेशन जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी हमने स्किल कौशल विकास करने की हमने व्यवस्था कराई है। जैसा आपने कहा कि कृषि प्रधान देश में क्या कर रहे हैं हम तो कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे कृषि विभाग के हैं और उनके जो रिसर्च स्टेशन हैं वो भी हमारे बहुत सारे हैं और बहुत मायने में हम लोग जो कौशल विकास कराते हैं वो कृषि से संबंधित भी रहता है ताकि जो कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने कृषि का काम अच्छी तरह कुशलता से कौशल से कर पाएं। साथ ही साथ कृषि एतर जो विषय हैं जिसमें अदर देन एग्रीकल्चर जो है उसमें भी अपनी पारंगत होकर अपनी इनकम को अपनी लाइवलीहुड को भी बढ़ा सकते हैं।
जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसमें पूछना चाहूं कि कृषि यानी कि खेती ही नहीं खेती के साथ जैसे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन है या डेयरी का विकास करना है तो वो भी सब इसमें शामिल है उसके लिए रोजगार दिया जाता है। जैसे शहद निकालने का ही मान लीजिए प्रशिक्षण है।
बिल्कुल
है ना।
बिल्कुल जैसा आपने कहा उद्यमिता बढ़ाने के लिए जैसे हमारे जो उद्यमिता के लिए भी हम बहुत सारे कोर्सेस करते रहते हैं राज्य स्तर पर और पंचायत स्तर पर। अभी हाल में हमने बहुत सारे पंचायत में हमने पंचायत की जरूरत के मुताबिक हमने उन्हें स्किलिंग कराने की व्यवस्था की है। जैसे जल निर्मल योजना की अगर आप बात करें वाटर सप्लाई स्कीम कैसे सुधारी जा सकती है। कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं जो स्मॉल उद्यम है उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है उनके बारे में टेक्निकल ट्रेनिंग देना फाइनेंशियल लिटरेसी देना और साथ ही साथ बैंक से जोड़ने का कार्यक्रम भी हम लोग करते रहे ताकि कौशल विकास के साथ साथ उद्यमशीलता भी अंदर लोगों को बढ़े और उद्यमशीलता के लिए भी उनको कौशल विकास की आवश्यकता है।
जी सर। वी हैव अनदर लिसनर फ्रॉम ओडिशा जाजपुर से हमारे साथ हैं पद्मलोचन मोहंती। मोहंती जी अपना सवाल पूछिए।
हेलो।
जी हाँ हम आपको सुन रहे हैं। नमस्ते बोलिए।
मैं पद्मलोचन मोहंती ओडिशा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
जी
मेरा सवाल ये है कि जो कौशल डिपार्टमेंट से वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट उनका क्या फर्क होता है और एनजीओ जो सस्ता होते हैं मेरा भी एक एनजीओ एनजीओ लोग कैसे उससे लोगों के पास पा जा सकते उन लोगों क्या फैसिलिटी है। थैंक यू
जी। देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट का लक्ष्य यह है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कौशल विकास कर पाएं और उसके लिए जो अंदरूनी जो ढांचा रहता है कि किस तरह की कोर्सेज होंगी, उसमें कितनी राशि लगेगी, कितने दिन का होगा, कैसे उसका असेसमेंट होगा, ये सारी चीजें लगभग बराबर रहती हैं। और फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ योजनाओं में राज्य सरकार व्यय करती है, कुछ में केंद्र सरकार से व्यय आता है। तो दोनों की अलग अलग महिमा है। दोनों को स्किल इंडिया मिशन का सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। दूसरा, जो आपने कहा एनजीओज के बारे में, हमारे पास जैसे हमने बताया कि ओडिशा के हर एक जिले में हमारे अभी जन शिक्षण संस्थाएं जो एनजीओ के माध्यम से लगे हुए हैं, जो वहां पे हरेक लोगों को कौशल विकास, उद्यमशीलता की वो स्किलिंग कराया करते हैं, जो काफी फ्लेक्सिबल होती है। साथ ही साथ बहुत सारे एनजीओज हमारे साथ स्किलिंग करने के लिए भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे एनएसडीसी के साथ उसकी एक अक्रेडिटेशन पॉलिसी है, जिसके मुताबिक अगर उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है, उनपे सामर्थ्य है, तो उनको भी हम कौशल विकास करने के लिए अपने साथ लेते हैं।
हमारे जो श्रोता इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम उन्हें बता दें कार्यक्रम पब्लिक स्पीक है, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एनएसडीएसके इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक वेदमणि तिवारी। आप भी अपने सवाल पूछकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, इस पर आप सवाल भेज सकते हैं। और फोन नंबर है 2342 1050। और ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से श्रोता हैं केशव। केशव जी बोलिए।
हेलो सर, नमस्ते।
नमस्ते
सर, मेरा सवाल ये, जैसे आईटीआई में कोर्स होते हैं तो सरकार हमारे को सुविधा देती है, तो ऐसी सर अप्रेंटिसशिप जो होती है उसमें सर जो कोर्स होते हैं उसमें सरकार क्या हमारे को, हमें बाहर जाना पड़ता है, तो वो सरकार हमारे को क्यों सुविधा नहीं देती है उसके अंदर?
मैं आपकी बात अगर समझूं तो देखिए, अप्रेंटिसशिप में आईटीआई में आपको आईटीआई के जो इंस्टीट्यूशन उसके अंतर्गत आपको स्किलिंग की जाती है। जहां अप्रेंटिसशिप होता है उसमें जो इंडस्ट्री वहां पर जाके आप स्किलिंग करते हैं, और उसके लिए आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और स्टाइपेंड की रेट हमने नियत की हुई है जो 5000 से लेकर 9000 तक रहता है। आप जितना पढ़े लिखे हैं, अगर आप डिप्लोमा या इंजीनियरिंग है तो आपको ज्यादा मिलेगा, अगर आप स्कूल या कॉलेज पढ़े हुए हैं तो आपको उसी के हिसाब से धनराशि दी जाती है। उसके अंतर्गत जो सरकार हमारी जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसमें लगभग 1500 रूपये आपके जो आप अगर अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी उसको जोड़ा जाता है, और उधर आपको कंपनी से भी स्टाइपेंड मिलती है। तो मेरे विचार से स्टाइपेंड के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए आप अपनी जो विलिंगनेस है उसको आप जाहिर करें, हमारे पोर्टल पर आएं, और उसके हिसाब से आपको अप्रेंटिसशिप कराने की सुविधा दी जाएगी, जिसमें आपको ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा।
वेदमणि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे भी हमारे युवा हैं जो जिनके पास कौशल है और वो उसमें एक प्रमाणीकरण के रूप में सर्टिफिकेट चाहते हैं, और फिर वो बाहर के देशों में, क्योंकि आने वाले समय को देखते हुए अगर हम पहले से सोचें तो बहुत सारे रोजगार की बाहर भी आवश्यकता है, तो ऐसे में जो भारत के, जो हमारे देश का युवा है वो उसमें कैसे योगदान कर सकता है?
ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज भारत का जो युवा है उसकी कौशल की पहचान सारी दुनिया को हो रही है, और हमारे युवाओं को इसके अंदर एक विदेशों में भी एक अवसर मिल रहे हैं। उसमें भारत सरकार बहुत अच्छा काम ये कर रही है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ भारत का विदेश मंत्रालय और कौशल मंत्रालय मिलके उन देशों के साथ समझौते कर रहे हैं, जहां पे लोगों को एक व्यवस्थित मार्ग से विदेशों में जो है नौकरियों की व्यवस्था बन रही है। करीब 12-14 देशों के साथ भारत सरकार ऑलरेडी बातचीत कर रही है, और दो तीन जगहों से तो इसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। तो उसमें जैसा कि सेक्रेटरी सचिव महोदय ने कहा है, हमारे जो सेंटर्स हैं जिला में कौशल केंद्र वगैरह में, वहां पे लोग अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो एक कौशल मंत्रालय के ने एक ऐप बनाया है और उसका वेब पोर्टल भी है, जिसको हम कहते हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब।
Yes, तो जो हमारे युवा श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए हम हेल्पलाइन नंबर भी बता देते हैं. तो ये हेल्पलाइन नंबर जो है और दूसरा एक जो व्हाट्सएप नंबर है ये अगर आप बता दें तो हमारे श्रोताओं के लिए.
सो हेल्पलाइन नंबर है 1800-123-9626
जी.
और जो व्हाट्सएप पे संपर्क करने के लिए वो 8800-55555
जी. इसके मैं आपको अभी श्रोताओं को अभी मैं कार्यक्रम के बाद भी ये कार्यक्रम के अंत में भी ये नंबर एक बार रिपीट कर दूंगी और इस पर वो आपसे जानकारी भी ले सकते हैं.
हाँ, इसके अलावा जो स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध के नाम से एक वेबसाइट है.
अच्छा, ये
आप उस पर भी जा सकते हैं
जी.
और एक ऐप भी है अगर आप के पास एंड्रॉयड फोन है तो.
क्योंकि हमारे दूर दराज के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर उनके पास हुनर तो है लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है उस हुनर को.
हाँ, बस वो जाके आप उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें ऐप में हिंदुस्तान का मानचित्र भी है.
अच्छा.
जिसके ऊपर आप अपने आसपास के केंद्र को खोज सकते हैं. उस केंद्र पे जाके आप वहां पे लगातार इस तरह के कार्यक्रम.
अगर आपसे ये जानना चाहूं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर ये युवा प्रशिक्षण ले सकते हैं या सर्टिफिकेट उसका ले सकते हैं.
करीब 36 सेक्टर्स हैं.
अच्छा.
जिनके अंदर 4000 से ज्यादा जॉब रोल्स हैं जिसको हम कार्य क्षेत्र कहते हैं. 4000 से ज्यादा कार्य क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत लोग जाके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं.
ठीक ठीक. अगले हमारे श्रोता हैं दिल्ली से ही हैं बलराम हमारे साथ फोन लाइन पर. बलराम जी बोलिए अपना सवाल.
नमस्ते मैम.
नमस्ते
मैम. मेरा ये प्रश्न है कि मैम सबसे पहले एक्सपर्ट को एक्सपर्ट के नमस्ते समझते सर. सर मेरा सवाल ये है कि जो दृष्टि बाधित व्यक्ति है जो विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति है उसके लिए गवर्नमेंट मतलब क्या कदम उठा रही है इसको लेकर के ये सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे
रोजगार देने के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार.
जी जो डिसेबल पर्सन जो दृष्टि बाधित व्यक्ति है
जी जी
उसके लिए ऐसे तो मतलब देखिए जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए तो काफी सारी स्कीमें वगैरह चलाई जा रही
है. बलराम जी आपकी बात समझ गए. ठीक
है.
हाँ नहीं बलराम जी मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि हमारे हमारे पास सेक्टर स्किल काउंसिल्स होती हैं जिसमें एक सेक्टर स्किल काउंसिल इस तरह के दृष्टिबाधित या और भी जो दिव्यांग हैं उनके बारे में स्किलिंग कराने की हमने व्यवस्था की है. और चूंकि ये आम कोर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दृष्टिबाधित हैं तो उसके लिए भी हमने बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे जॉब रोल्स या जो ऑक्यूपेशन वो हमने बनाई हुई है और जिसके अंतर्गत भी उनकी स्किलिंग की जा सकती है.
अगर मैं यही सवाल वेदमणि जी आपसे पूछूं कि आपकी संस्था इस संबंध में कुछ कार्यक्षेत्र हैं उसके पास.
एक तो जितने भी जो केंद्र बनाए जाते हैं प्रशिक्षण केंद्र उनमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो वहां पे आराम से आके वो कर सकें. दूसरा जैसे कि सचिव महोदय ने कहा कि एक हमारी सेक्टर स्किल काउंसिल है जो दिव्यांग लोगों के लिए ही काम करती है. वो ये काम करती है कि जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उनमें कौन से कार्य क्षेत्र उपयुक्त हैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए या किसी और तरीके की दिव्यांग के लिए उनको चिन्हित करके और उनको वो कराती है उसी में प्रशिक्षण कराती है. तो जो हमारे दृष्टिबाधित श्रोता हैं या उनके कोई जान पहचान में है वो अपना एक इंटरेस्ट शो कर दे क्योंकि उसके हिसाब से जैसे जहां पे लोग अवेलेबल हो सके उस तरीके से उनकी व्यवस्था की जाती है और व्यवस्था का वहां पे प्रबंधन किया सकता है.
हमारे अगले श्रोता हैं थाने से गुरुनाथ जी महाराष्ट्र थाने से बहुत दूर से बोल रहे हैं. गुरुनाथ जी स्वागत है आपका बोलिए.
जी मैम नमस्ते.
नमस्ते
मैम. मेरा क्वेश्चन है मैम ये जो कौशल विकास से सरकार ने जो ध्यान दिया है वो अच्छी बात है क्योंकि हमारे मतलब जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें तो हमने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बना दिए सबको. और मैम मेरा ये सवाल था कि मतलब आगे चल के जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे स्किल के क्या जैसे हमारे देश में तो 800 के करीब जो जिले है तो हर जिले में ये.
नहीं आप पूछना क्या चाह रहे हैं आप सवाल सीधा पूछ लीजिए.
जी जी तो मैम ये जो मतलब ब्लॉक स्तर पे भी मतलब आगे जाके मतलब इसका दायरा बढ़ा सकते हैं. थैंक यू मैम.
अच्छा वो जिला से ब्लॉक स्तर पर कह रहे हैं.
जी हाँ नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान हमने बनाए हुए हैं और जैसा एज इट नेम सजेस्ट डिस्ट्रिक्ट आर मेड ऑफ ब्लॉक्स और इसमें ब्लॉक के बारे में भी जानकारी दी गई है और उनके बारे में भी स्किलिंग के पर जो सेंटर हैं और क्या स्किल के रिक्वायरमेंट वो भी हमने जानकारी ली हुई है उसके हिसाब से भी हम वहां पे जिला लेवल पे स्किलिंग कराते हैं।
ठीक है सर आपके एनएसडीसी इस मामले में
एनएसडीसी तो कौशल मंत्रालय के साथ ही काम करती है और
लेकिन जब आप ब्लॉक स्तर तक पहुंचते हैं या जिला स्तर तक पहुंचते हैं तो क्या आपका एक फीडबैक आता है युवाओं से कि सरकार जो युवाओं में आत्मविश्वास जगाने की इतनी सारी कोशिश कर रही है तो इस नई योजना से आपको क्या आपका फीडबैक है कि कितने युवा इससे प्रभावित हैं?
नहीं इसमें जो हमारे जो कौशल केंद्र हैं वो ब्लॉक और पंचायत लेवल तक जाते हैं।
अच्छा।
और वहां पे नवयुवकों को एकत्रित करके उनको सरकार की कौशल स्कीम्स के बारे में समझाते हैं।
यानी सीधी बात अगर हम अपने श्रोताओं से ये कहें जो हमारे युवा नौजवान श्रोता सुन रहे हैं कि अगर वो अपने गांव की पंचायत तक भी पहुंचे तो भी उनको ये सारे लाभों के बारे में उनको जानकारी मिल सकती है।
मतलब समय समय पर हमारे कौशल केंद्र के लोग जाते हैं और जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च होती है गांव गांव में जाके उसके लिए मोबिलाइजेशन करने का काम करते हैं
और वो पूरी जानकारी देते हैं कि इसके लिए उनको अगर वो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं स्वरोजगार
के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रमों की व्यवस्था है पर स्वरोजगार के लिए लोगों को खुद अपना एक इंटरेस्ट शो करना होता है
जी।
हो सकता है कि हर गांव के लेवल पे ये ना स्वरोजगार की बात ना पहुंच पाए लेकिन उसके लिए बेहतर ये होगा कि लोग हमारी जो स्किल इंडिया डिजिटल हब मैंने बोला स्किल इंडिया डिजिटल हब तो हर जगह अवेलेबल है उसके ऊपर जाके इस जानकारी को देखने की कोशिश करें
और इस तरह से जो हाथ के काम है या जो परम्परागत तौर पर कोई बच्चा सीख रहा है अपने परिवार से तो उनको भी वो पंचायत में ये बताया जाएगा कि अगर विदेश में जाने के लिए उनको प्रशिक्षण चाहिए या नौकरी चाहिए जो आपने कितने प्रोग्राम बताए 30 से ज्यादा ही बताए शायद
36
सेक्टर्स हैं तो वो सारी जानकारी उनको वहां मिलेगी।
हाँ बिल्कुल मिलेगी।
अब मैं चलने से पहले एक जो आपने हेल्पलाइन नंबर बताया था वो भी बता देती हूं और व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन नंबर है हमारे श्रोताओं के लिए 1800 1239 626 1800 123 9626 ये हेल्पलाइन नंबर है अगर आपको कोई भी चीज समस्या है या कुछ है और एक व्हाट्सएप नंबर है 8800055555 मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूं 8800555555 8800055555 सर ये जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप नंबर में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है वो
अपना प्रश्न उसमें डाल सकते हैं उसको फिर जवाब दिया जाता है।
ये तो बहुत ही अच्छी सुविधा है हमारे श्रोताओं को इससे बहुत खुशी होगी। तो चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि सरकार का लक्ष्य लोगों विशेष रूप से युवाओं और हमारे नौजवानों के जीवन को आत्मविश्वास दिलाना है कि आप अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं और उसके बाद रोजगार की दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। आज की चर्चा और हमारे सुनने वालों के सवालों के जवाब देने के लिए और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी जी आपका और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एनएसडीसी इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक वेदमणि तिवारी जी आप दोनों का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए।
हमारा भी धन्यवाद
और उन सभी श्रोताओं का आभार भी हम व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पब्लिक स्पीक में हिस्सा लिया। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in देख सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार को रात ठीक 9:30 बजे हम एक और मुद्दे को लेकर एक और विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।